ये आकाशवाणी है, अब आप आशुतोष से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के कजान में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से द्विपक्षीय वार्ता की। 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग बातचीत में श्री मोदी ने भारत का यह रुख दोहराया कि रूस यूक्रेन संघर्ष का समाधान शांतिपूर्वक किया जाना चाहिए।
रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। हमारे सभी प्रयास मानवता को प्रमुखता देते हैं। आने वाले समय में भी भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है।
प्रधानमंत्री ने कहा उनकी हाल की रूस यात्रा दोनों देशों के बीच सामंजस्य और गहरी मित्रता दर्शाती है। राष्ट्रपति पुतिन ने कजान में दूतावास खोलने के भारत के फैसले का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति पुतिन के साथ मुलाकात को सार्थक बताया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच बहुत गहरे संबंध हैं। श्री मोदी ने कहा कि बातचीत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय साझेदारी को और अधिक मजबूत बनाने पर केंद्रित थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक में श्री मोदी ने रूस की ब्रिक्स की अध्यक्षता की सराहना की और सम्मेलन की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने बताया कि दोनों नेताओं ने भारत रूस संबंधों की समीक्षा की। उन्होंने इस वर्ष जुलाई में मॉस्को में उनकी बैठक के दौरान लिए गए फैसलों की प्रगति पर विशेष रूप से बातचीत की। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजशकियान से द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत और सिंगापुर विशेष रूप से स्वचालन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सिंगापुर के रक्षा मंत्री अंग एंग हन ने आज नई दिल्ली में 6वीं भारत सिंगापुर रक्षा मंत्री स्तरीय वार्ता की सह अध्यक्षता की। दोनों पक्ष साइबर सुरक्षा जैसे उभरते क्षेत्रों में रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। वे संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण पर द्विपक्षीय समझौते को अगले 5 वर्ष तक बढ़ाने पर भी राजी हुए हैं। सिंगापुर के रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत एशिया की शांति और स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण आवाज है। सिंगापुर के रक्षा मंत्री डॉ अंग एंग हेन ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय सहयोग का गौरवशाली इतिहास रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री की हाल की सिंगापुर यात्रा और दोनों देशों के बीच मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक के दूसरे दौर से संबंध सुदृढ़ हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के चार्टर को और अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए अगले 4 महीनों में सुधार करेगी। गांधीनगर के महात्मा मंदिर में नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड पर 14वें अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए उन्होंने समकालीन चुनौतियों से निपटने के लिए बल को उन्नत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। वक्फ संशोधन विधेयक 2023 पर संसद की संयुक्त समिति ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी को समिति की बैठक में भाग लेने से एक दिन के लिए निलंबित कर दिया है। यह निर्णय संसद भवन में समिति की बैठक के दौरान उनके अभद्र व्यवहार को के बाद लिया गया। समिति के अध्यक्ष भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने बताया कि श्री बनर्जी भाजपा सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय के साथ बहस के बाद अमर्यादित आचरण पर उतर आए थे। झारखंड में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण और महाराष्ट्र में एक चरण में होने वाले चुनाव की अधिसूचना आज जारी हो गई है। नामांकन पत्र 29 अक्टूबर तक भरे जा सकते हैं। झारखंड में इस चरण में 38 सीटों पर और महाराष्ट्र में सभी 288 सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होगा। दोनों राज्यों में मतगणना 23 नवंबर को होगी। झारखंड में पहले चरण में 57 नामांकन पत्र भरे गए हैं। बंगाल की खाड़ी में भीषण चक्रवाती तूफान दाना ओडिशा तट की ओर बढ़ रहा है। इसके बृहस्पतिवार और शुक्रवार रात केंद्रपाड़ा में भितरकनिका और ओडिशा तट के भद्रक या बालासोर के बीच टकराने की आशंका है। मौसम विभाग ने कहा है कि गुरुवार सुबह तक इसके उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की संभावना है। तूफान के ओडिशा तट पर 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से टकराने की आशंका है। 14 तटीय और पड़ोसी जिलों के सभी स्कूल कल से 3 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। सुल्तान जोहर कप हॉकी टूर्नामेंट में भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने मेजबान मलेशिया को 4-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। इस जीत के साथ भारत 9 अंक के साथ तालिका में शीर्ष पर है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।